بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مربش تحلیل سیاسی کے 42 گفتگو سماعت کر رہے ہیں، ایپیسوڈ 42، اور اس میں رہبر معظم اسلامی انقلاب کے بارے میں تجزیہ کر رہے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اسلامی انقلاب کے ایک ہدف تھا، اس نے اپنا ایمان و تقوی اجتماعی کے ذریعے سے اپنا کام شروع کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے راہ میں رکاوٹیں ہیں اور تھیں اور رہیں گی، یعنی بغیر رکاوٹوں کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، سارے کام جتنے بھی ہیں وہ سب جو ہے وہ رکاوٹوں کے ساتھ ہیں، لہذا ہمیں ان کو چیلنجز کو سمجھنا چاہیے. کہتے ہیں کچھ اندرونی رکاوٹیں کچھ بیرونی رکاوٹیں، یعنی جب بھی انسان ایک ہدف کی طرف بڑھتا ہے تو کچھ اندرونی رکاوٹیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کے اندر سے جنم لے رہی ہوتی ہے، کچھ بیرونی رکاوٹیں. اندرونی رکاوٹوں کو اندرونی طور پہ انسان نے حل کرنا ہے، ان کا راستہ روکنا ہے کہ وہ کہاں سے جنم لے رہی ہیں، ان کا سدباب کرنا ہے، اور پھر اس کا علاج کرنا ہے، اس کا معالجہ کرنا ہے. رہبر کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کرنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سوچنا، ہمارا لڑائی، یہ سب متوجہ ہے اس چیز کی طرف کہ آیا ہم صحیح عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس طرح میں رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں، ہمارے منصوبے اثر انداز ہوتی ہیں، ہمارے اقدامات کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. وہ رکاوٹیں کیا ہیں اندرونی؟ وہ ہماری کمزوریاں ہیں، وہ ہمارے نگیٹو پوائنٹس ہیں، وہ ہمارے منفی نکات ہیں کہ جو ہمارے اقدامات پر، ہماری سوچ پر، ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر ہمیں ایک بڑے مقصد سے روک دیتے ہیں. جیسے کہ اس جنگ میں مسلمان دنیا کی محبت میں اصحاب رسول گرفتار تھے، جس کی وجہ سے رسول اللہ کے حکم کے باوجود وہ مال غنیمت کو جمع کرنے کی محبت میں آگے بڑھے، جس کے نتیجے میں شکست کھانی پڑی. یعنی انفرادی طور پر جو ان کی ذمہ داری تھی اس سے انہوں نے پہلو تہی اختیار کی، حکم رسول خدا کو پامال کیا اور دنیا کی محبت، مال دنیا کی محبت میں آگے بڑھے، جس کا خمیازہ مسلمانوں کو اس شکل میں برداشت کرنا پڑا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. خوب اندرونی طور پر ضعف تھا، کمزوری تھی، جس کا نتیجہ پھر اجتماعیت میں جا کے نکلتا ہے. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اندرونی ضعف کیا ہے؟ وہ آسان طلبی ہے، راحت طلبی. انسان آسان طلب ہو جاتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے، ہر چیز کو آسان لینے لگتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر چیز کو جو نا بہت ایزی لینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا، ٹھیک ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں، فکری طور پر انسان جو ہے وہ ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے. کہتے ہیں خود کسی چیز کو آسان جاننا خود مشکل ساتھ ہوتا ہے. آپ جتنی مشکل، جتنا آپ کو کام ہے، آپ اس چیز کو سنجیدہ لیں، اس کو سمجھیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد پھر اس کو عمل کریں، آپ کامیاب ہوگی. لیکن آپ کہیں ایزی ہے، ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ کا کام میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہیں، وہاں پہ انسان غلطی کرتا ہے. کسی چیز کو آسان سمجھنا خود مشکل ساز ہوتا ہے، مشکل کا سبب بنتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں چیلنجز سے فرار نہیں کرنا چاہیے. خوب لہذا فرماتے ہیں کہ سہل انگاری ہے، سطحی نگاہ سے دیکھنا ہے، منصوبہ سازی نہیں کرنا ہے، کسی کام میں بغیر پلاننگ کے اور منصوبہ بندی کے کود جانا ہے، یہ سب اندرونی ضعف ہیں کہ جو پھر عمل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، پھر وہاں پر جو ہے وہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، گاڑی کو چیک کریں، گاڑی کو چیک نہیں کیا تو اگر لمبے سفر پہ گئے وہاں میکینک نہیں ملے گا آپ کو، پھر وہاں پہ مشکلات کے شکار ہوں گے. لوگوں کی مثال بعض اوقات ایسی ہوتی ہے، بغیر پلاننگ کے کود جاتے ہیں کاموں میں، بغیر دیکھا، ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، ہو جائے گا، پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ آخر میں جو ہے وہ بیچ میں پھنس کے رہ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ چیلنجز کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا. بھائی خدا نہیں، کیونکہ یا ولی العافیہ نصر کا العافیہ عافیت الدنیا والآخرہ. خوب ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت دے. عافیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، عافیت کا مطلب یہ ہے کہ ان میں گرفتار نہ ہو، چیلنج کو قبول کریں. خوب مثلا میں ایک مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں کہوں یا ولی العافیہ میں تو اسے عافیت چاہتا ہوں، عافیت چاہتا ہوں کہ فلاں ٹیم کا مقابلہ نہ کروں، ورلڈ کپ جیت جاؤں، اصل میدان میں اترے بغیر، مشکل کا مقابلہ کیے بغیر، نیٹ پریکٹس کیے بغیر، ٹف ٹائم دیے بغیر، میں کیسے بھی ورلڈ کپ جیت سکتا ہوں. خوب وہاں پہ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری عافیت اس میدان میں کہ چیلنجز کا مقابلہ کرو اور اپنی قوم کو مثلا ورلڈ کپ جیت کے دکھاؤ، یا فلاں عہدہ لے کے دکھاؤ، یا فلاں میڈل جیت کے دکھاؤ، یہ تمہاری عافیت ہے. نہیں عافیت ہے کہ گھر میں آ کے بیٹھے ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ جناب، جیسے کہ ہاں انہیں قائدون حضرت موسیٰ کے ماننے والے نے کہا، موسیٰ ہم تو یہاں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، آپ جائیے اور آپ کا خدا فقاتل انتا و رب کا فقاتل، تم اور تمہارا خدا جائے جا کے قتل کرے، ہم یہاں بیٹھیں، جب فتح کے جھنڈے گڑ جائیں پھر ہمیں بلا لینا. یہی کام امام زمانہ کے ساتھ ہوا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے خود کریں گے. اصل یہ کہا جا رہا ہے، اصل مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جناب امام سجاد کے زمانے میں مثلا امام نے یہ دعا کر دی، وہ دعا کر دی. یعنی امام سجاد کی روش جو ہے وہ خلاف تھی، या मिसाल के तौर पर नहीं होना चाहिए था। यानी वो कहने चाह रहे हैं कि उस ज़माने के जो इनकलाब थे इमाम बनू उमैया के दौर में, उनको आज के दौर से मिला रहे हैं कि जनाब अब जो है कोई इनकलाब की बात नहीं होनी चाहिए, कोई जिहाद की बात नहीं होनी चाहिए, किसी इज्तमाही मूवमेंट की बात नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी सोशल तहरीक नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इमाम ज़माने से पहले जो परचम उठेगा वो जहन्नुमी होगा। वो तो ये कहा जाता है, इंतज़ार से पहले आपने कोई हरकत, कोई तहरुक, कोई मूवमेंट, कोई तहरीक नहीं चलानी है, आपने हाथ हाथों की। ये असल ये आज तशय्यु के अंदर हो रहा है, तशय्यु के अंदर बैठ के लोग जो इतने गलत और मुनहरिफ नज़रियात को फ़रोग़ दे रहे हैं, उनमें से एक ये कि चैलेंज का मुकाबला न करें, आपका काम अल्लाह अल्लाह करना है, आपसे दुआ करें अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फराज वल आफियत वन बस काफ़ी है। रहबर कहते हैं ये वो गलत आदात हैं कि जिनकी बुनियादों पर हमारी तरबियत की गई है। हमारी कुछ इनफरादी गलत आदात होती हैं, तरबियत आदात अतवार होते हैं, कुछ इज्तमाही होते हैं। ये उन इज्तमाही गलत आदाब और तरबियत का नतीजा है कि हम चैलेंज से फ़रार करना चाहते हैं। खुद पाकिस्तान में अफरात व तफरीत आपको नज़र आएगा, ये अफरात व तफरीत जो है वो मुख्तलिफ सतह पर नज़र आ रहा है। लिहाजा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस्लामी इनकलाब को भी सीधे सामना था, हम नहीं जीत सकते, हम नहीं कर सकते, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, और हम शाह से नहीं लड़ सकते, ये सारी चीज़ें जो थी हमारे जहनों में थी, जैसे कि आज हम मुख्तलिफ महाज़ों पे इस दुनिया में देख रहे हैं। तो गलत अतवार और गलत आदात जो हैं वो डाल दी जाती है। बस यही एक छोटी सी मिसाल, जो टिशू पेपर को यूज़ करना, हम आदि हो गए टिशू पेपर, अपने हाथ को धोने की आदत नहीं है, रुमाल की आदत नहीं डाली, हमने जो है वो क्या किया है, टिश्यू पेपर पानी की तरह हो गया। यानी एक टिश्यू पेपर बनने के लिए जो है वो कई दरख्त कटते हैं, तब जाकर टिश्यू पेपर वजूद में आता है, और फिर उसका अगर तेज़ी से जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये दरख्त कटने का अमल जारी रहे तो हरियाली बाकी नहीं रहेगी, फिर उसके माहौलियात के जो मुज़र्रात और नुकसान हैं वो फिर हमें उनका सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारी रविशें कि जो इज्तमाई तौर पर गलत हो गई और गलत तरबियत के नतीजे में हमने कबूल कर ली और नस्लन बादा नस्लन इसको इसका सिलसिला जारी है। उनमें से एक गलत तरबियत यह है अरबाब इख्तदार का करप्शन, बदउनवानियाँ। यानी असलन हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई हमारा कोई सियासतदान हो और वो सही व सालिम करप्ट ना हो। हमारे अक्सर सियासतदान आप देखेंगे इन गुज़िश्ता 72 सालों में अक्सरियत करप्ट है, बदउनवान है, रिश्वतखोर हैं, मिस्टर 10% हैं, बाहर ममालिक से इनके ताने बाने हैं, दुश्मनों को जगह देते हैं, इनकी फैक्ट्रियां हैं, अर करते कि किसके सामने हकायक नहीं है। अगर अब भी आंखें नहीं खोली हमने तो कब खोलेंगे। इस कौम को उठना होगा, बेदार होना होगा इस मोरिसी सियासत से कि फला मर जाए तो बेटा आ जाए, फला मर जाए तो बेटा आ जाए। हरियाणा ग्रामी बड़ा ताज्जुब होता है। अभी मैंने एक ख़बर पढ़ी कि पंजाब की कोई सियासतदान थी, उन्होंने अपने बेटे को सीट दिलाने के बजाय अपनी पार्टी के एक अदना सा एक वर्कर को जो है कहा कि ये इलेक्शन लड़ेगा मेरी जगह आइंदा साल। तवज्जो की आपने, आज आप देखिए बड़ी बड़ी पार्टियां हमारी, वो उनके बाप दादा मर गए, किसी की माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, अब उनका बेटा जो है वो वज़ीर आज़म है, जो 25 साल उसकी 30 साल उम्र है और जो है वो उसका तजर्बा 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल का है, और उसके मुकाबले में कौन खड़े हैं, 30-30, 50-50 साल के तजर्बाकार अफराद खड़े हैं। ये मोरिसी सियासत है। लिहाजा ये करप्ट बदउनवान जो हमारे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ के सियासतदान हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। लिहाजा आप देखें कि असल माजी में भी हुआ, आप वलीद को देखें, इब्तिदा इस्लाम की बात है, इमाम अली के ज़माने की बात है, वलीद शराब पीता है, शराब पीने के बाद मस्जिद में आता है और दो की जगह चार पढ़ा देता है और फिर पीछे मुड़ के कहता है कि अगर चाहो तो और भी पढ़ा दूँ मैं। यानी इस तरीके से जो है वो इतना मस्त हो जाता है एक खलीफा, इतना करप्ट हो जाता है, इतना बदउनवान हो जाता है कि शराब जिस फील को जिस पे हज जारी है कुरान ने कहा है वो आके नमाज़ पढ़ाई। यानी ऐसे ऐसे खलीफे थे, ऐसे ऐसे मुसलमान थे, मुसलमानों के सर पे ऐसे ऐसे मुतदी थे, बनू उमैया ने ऐसे अफराद की तरबियत की थी और दर हकीकत ऐसे अफराद को उम्मत मुस्लिमा के सर थोपा था। इस्लामी इनकलाब की इब्तिदा में भी रहबर कहते हैं कि इस तरह के अफराद थे। उन्होंने एक वाक़ा सुनाया कि मैं एक जगह गया था, वहाँ एक आलिम दीन थे, बहुत अच्छे आलिम दीन थे लेकिन सादा लोग थे, तो शाह ईरान जो है उनके पास आया था, और आने के बाद जो है जवानी का दौर था उसकी, तो वो इनसे मिलने गया। जब इनसे मिलने गया तो इनके मदरसे भी गया, बड़ा एहतराम किया, बहुत इज़्ज़त व इकराम और इनाम और तोहफ़े तहाइफ और ये सारी चीज़ें। तो जब वो चला गया तो कहेंगे भाई ये तो बड़ा अच्छा है, बहुत नेक इंसान है। तो उन्होंने कहा क़िबला ये बुराइयाँ अंजाम देता है, फिस्क फुजूर करता है। अरे भाई इतना तो करता ही होगा ना, ऐसा तो होता है ऐसे ऐसे कामों में। यानी वो आलिम दीन है लेकिन इतना सादा लोग का था भाई, बादशाह है वो, शराब नहीं पीएगा तो क्या पिएगा, एप्पल का जूस पिएगा, कोई स्लाइस जूस पिएगा, वो शराब ही पिएगा। बादशाह तो मतलब हमारे जहन में क्या था, बादशाह तो बड़े काम करेगा, खूब अगर वज़ीर आज़म तो बड़ी चोरी करेगा, ठीक है ना, उसका बेटा है तो इतनी चोरी करेगा जो आज हमारे मुल्क में हो रहा है, सारा पैसा बाहर ले जा रहे हैं। यानी वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले अफराद और वो जो पढ़े जा रंगे रंगे हाथों पकड़े जाते हैं उनको भी छोड़ दिया जाता है। आपकी खिदमत में हैं बहुत सी केसेस हैं आपके सामने गुजरे मारी माजी में तारीख से। तो ऐसे जहनों में था कि असल बड़ा आदमी है तो करप्ट तो होगा ही होगा, यानी हमारे जहन में तसव्वुर ही नहीं था। आप देखें इमाम खुमैनी की सियासत के, अपने बेटे को मना किया मेरी ज़िंदगी में उसके बाद तुम कोई सियासी अहदा नहीं लोगे, मुल्क की सेहत में दखालत नहीं करोगे। वो यहाँ से गए तो एक ही सूट केस है उसमें चंद कपड़े आपके थे, वही जो इनकलाब से पहले थे वो इनकलाब के बाद है। आज आप हमारे सियासतदानों को देखें, हमारे फौजी जनरलों को देखें, एक जो है अपनी फौजी मनसब से हटता है तो उसकी जो है क्या, उसके मिसाल के तौर पर असासे होते हैं, वज़ीर आज़म के असासे होते हैं, एक तोशाखाने की घड़ी के पीछे लेके जो है वो उसको पीछे पड़ गए, इससे बड़े बड़े जो हैं तोहफे इन्होंने चुरा लिए हैं और हड़प कर ली और हज़म कर ली और डकारे इनको नहीं आई अभी तक दर हकीकत। तो ये करप्शन देखिए, एक तरफ हमें नेल्सन मंडेला जैसे शख्स मिलता है जिसके असासे सबके सामने है, इमाम खुमैनी जैसा शख्स मिलता है जिसके असासे सबके सामने है, रहबर मौज़म मिलता है जो 40 साल पहले जो टेबल थी उनके घर में वही आज है, वही पुराना कालीन जो आज से 30 साल 40 साल पहले था इस्लामी इनकलाब से वही आज बिछा है, वही सादा कपड़े जो इस्लामी इनकलाब के थे वही दर हकीकत थे उन्हीं के आज भी। असल तकवा यही है कि इंसान मादियत में गिरफ्तार ना हो। तो रहबर कहते हैं कि यह हमारे जहनों में था। फिर कहते हैं कि एक और गलत तरबियत यह है कि इस्लामी इनकलाब की मुखालफत की जाती रही, इस्लामी इनकलाब सही नहीं है, इस्लामी इनकलाब गलत है, ये इमाम से पहले सर उठाना है। खूब जैसे कि आज भी वजाहतें की जा रही हैं कि जनाब मिसाल के तौर पर इमाम ज़माने से पहले कोई इनकलाब नहीं आएगा, क्योंकि हदीस में जो इस्लामी इनकलाब से पहले सर उठाएगा अलम उठाएगा वो जहन्नुमी है। खूब जनाब ये बनू उमैया बनू अब्बास ने गलत तशरीह की है इसकी, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस्लाह माशरा के लिए इमाम ज़माना की इनकलाब की ज़मीन हमवार करने के लिए कोई काम ना करें, इसका मतलब ये है कि हम इद्याए महदवियत ना करें। जो इमाम ज़माना होने के दावा करते हैं वो जहन्नुमी है, ना ये कि जो इमाम ज़माना के हाथों को मजबूत करे। यानी आज भी हमारे हौजे के पढ़े लिखे अफराद जो हैं ये बातें कर रहे हैं, तो इज्तमाही तहरीक ममनू है। असल ताज्जुब है जनाब आप पर कि आप ऐसी बातें करें। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि रबर फरमाते बनू उमय्या बनू अब्बास में महदवियत की दावा करने वाले अफराद थे वो सब जहन्नुमी है, लिहाजा मासूम ने कहा कि जो अलम बुलंद होगा इमाम ज़माना के ज़हूर से पहले वो जहन्नुमी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि जो इमाम की मदद के लिए उठे, इमाम के रास्ते के लिए उठे, इमाम के कॉज के लिए उठे, नहीं, वो जो ख़ुद महदवियत का दावा करें। बस इस बना पर रहबर कहते हैं यह ज़रूरी है कि इफ़ाम व तफ़हीम को वाज़ह किया जाए और इफ़ाम व तफ़हीम के साथ जो है मसाइल को आगे बढ़ाया जाए। यानी ज़रूरी है तबलीग दीन में कि हम समझाएं बताएं अपने अहदाफ़ को बयान करें। कहते हैं कि हमारे दौर जब रहबर कहते हैं जब इस्लामी इनकलाब आ रहा था उससे पहले मार्क्सिज्म का दौर था। मार्क्सिज्म यानी छुप छुपा के काम करना, असल वजाहत डिस्क्राइब करना डिफाइन करना ये उनकी सियासत में था ही नहीं। तो मसलन एक कहते हैं एक मार्क्सी नौजवान था, मार्क्सिज्म का मतवाला था, वो मेरे पास आया कहना आप क्या करना चाहते हैं, हम इस्लामी इनकलाब लाना चाहते हैं, हम बयान करना चाहते हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि इस्लामी इनकलाब। कहते हैं यही तो आपकी गलती है, आप बता क्यों रहे हैं, आप काम करें बस, बताने की जरूरत नहीं है, जो होना वो हो जाएगा, आपके चाहने चाहने से कुछ नहीं होगा। रहबर ने कहा जनाब इस्लामी रविश यही कि बताया जाए, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक, बताओ बयान करो, मानो नुज़्ज़िला जो कुछ नाजिल किया गया है, लितुबय्यिना लिन्नास उसको वाज़ह करो। तो लिहाजा वो कहते थे इस्लामी इनकलाब जो है वो कामयाब होने वाला नहीं है। ایک اور چیز جو آپ کی خدمت کروں اجتماعی غلط تربیت کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھوس دیا گیا تھا ایرانی قوم کے ذہنوں میں کہ ہم نہیں کر سکتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رضا خان اور پھر محمد رضا پہلوی کی ڈکٹیٹرشپ میں جو ہے یہ قوم جو نابود ہو کے رہ گئی، اساسے ان کے منجمد کر لیے، ان کی دولت کو ہڑپ کر لیا گیا وغیرہ وغیرہ، وہ پورا آپ کے سامنے ہے۔ رہبر کہتے ہیں کہ ہم نے آ کر اسلامی انقلاب سے کہا مامی توانی ہم کر سکتے ہیں، اور ہم نے کر کے دکھایا، ہم نہیں کر سکتے کہ مٹا کر، ہم نے کہا ہم کر سکتے ہیں، وی کان ڈو اٹ کی جگہ وی کین ڈو اٹ، ہم کر سکتے ہیں، ہم میں سکت ہے۔ مامی توانی پہلے کہا تھا مامی نمی توانی، ہم نہیں کر سکتے، نہ انقلاب لا سکتے ہیں، نہ شاہ سے لڑ، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں ہمت مدہ مدد خدا، رہبر نے کہا ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ لہذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔